वास्तव में योग माया कैसे कार्य करती है,
उसके लिए हम माया की, जो मायावादियों की संकल्पना है, और फिर जो वैष्णव समझ है माया की, और फिर माया की जो वैष्णव समझ है उसमें जो दो विभाग है, महामाया और योग माया, इसके थोड़ा चर्चा करेंगे। तो सबसे तो जैसे हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम सब गॉड इस शब्द को इस्तेमाल करते हैं, पर वास्तव में वो जो भी हम कोई शब्द इस्तेमाल करते हैं उससे मन में एक संकल्पना जागृत होती है। तो जो क्रिश्चियन धर्म में गॉड की संकल्पना है और जो वैदिक धर्म में गॉड की संकल्पना है बहुत अलग है। वो कि जैसे जैसे क्रिश्चियन धर्म है कि गॉड भगवान है और उनके प्रतिस्पर्धी है, और जैसे मोसेस के सामने जब भगवान प्रकट होते हैं एक जलती हुई झाड़ी में, तो भगवान कहते हैं मेरे अलावा तुम किसी के और को पूछना नहीं चाहिए, कि मैं एक ईर्ष्यालु भगवान हूं। तो मतलब भगवान है और उनके प्रतिस्पर्धी है। तो उस जबकि वैदिक संस्कृति में जो है एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण के परे भगवान है। तो जो धारणा है, जो हम एक शब्द बोलेंगे गॉड, वो एक शब्द बोलेंगे गॉड, पर जो मन में संकल्पना आती बहुत अलग है। ये विस्तारित शब्द है, विचार है ये। ऐसे बुद्धिस्ट लोग है वो भी आत्मा मानते हैं, पर वो आत्मा को एक शरीर और मन से भिन्न एक तत्व नहीं मानते। वो सोचते हैं कि आत्मा मतलब मन के स्मरणों की श्रृंखला, द एग्रीगेट ऑफ द मेमोरीज ऑफ द माइंड इज कॉल्ड एज अ सोल। तो इसीलिए यद्यपि वो आत्मा मानते हैं, पर आत्मा का जो संकल्पना है उनकी और जो भगवदगीता की है, वैदिक शास्त्र की, वो बहुत अलग है। तो वैसे ही वैष्णव और जो मायावादी है वो दोनों माया के बारे में बात करते हैं, पर जो माया है उसकी संकल्पना बहुत अलग है। तो हम जानते हैं कि भगवदगीता में जो वैष्णव संकल्पना है माया की, क्या माया ये भगवान की शक्ति है, और ये शक्ति जो जीवात्मा भगवान की सेवा नहीं कर जाना चाहते हैं उनको ढक देती है, ये महामाया है। पर जो मायावादियों के अर्थ है माया, उनको मायावादी क्यों कहा गया है, क्योंकि वो कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, पर जो कुछ भी दिखता है वो सब माया ही है। कहते मैं माया हूं, आप माया है, ये जगत माया है, आकाश माया है, यहां तक कि भगवान भी माया है। जैसे वो नास्तिक लोग कहते, वो मायावादी लोग कहते हैं आई वॉज एन एथीस्ट टिल आई डिस्कवर्ड आई वॉज गॉड, कि मैं तब तक नास्तिक था जब मैं समझ गया कि मैं भगवान हूं। मैं भगवान हूं का मतलब क्या है, वो अभी हम मायावादियों के मंदिर में जाएंगे, जो मंदिर कहना है, आश्रम जो भी कहना है, वहां पे भी विग्रहों की पूजा होती है। परम पूज्य पाता महाराज उनका एक अनुभव बताते हैं, वे जब पहली बार पुरी में आए थे प्रभुपाद जी के साथ, तो फिर तभी वो जगन्नाथपुरी में पाश्चात्य देश में जो वैष्णव जन्म हुए थे उनको प्रवेश नहीं दे रहे थे। तो फिर जयपता का महाराज प्रभुपाद जी के आदेश में जाके मिले पुरी के अध्यक्ष से, बोले कि पुरी मंदिर के अध्यक्ष की देखो जो सब वैष्णव भक्त है पाश्चात्य देशों के भले ही हो, पर उन्हें सब बुरी आदत छोड़ दी, अभी भगवान कृष्ण के लिए समर्पण किया अपने जीवन का, उन्हें प्रवेश देना चाहिए। तो बोले कि आप पुरी के शंकराचार्य से जाके मिलो, अगर वो मान लेंगे तो वो इजाजत देंगे तो हम उनको आपको आने देंगे अंदर। तो फिर वे गए शंकराचार्य से मिलने, वहां पे तो देखा कि बाहर सुंदर राधा कृष्ण के विग्रह थे। तो कहा बड़ा आश्चर्य हुआ, ये मायावादी राधा कृष्ण कैसे पूजा कर रहे हैं। तो फिर उनको याद आया प्रभुपाद जी ने एक मॉर्निंग वॉक सुबह के बातचीत में बताया था कि जब मायावादी अपने मायावाद से बोर हो जाते हैं तो थोड़ी डिटी वर्शिप कर लेते हैं, थोड़ी विग्रहों की पूजा कर लेते हैं। क्योंकि मायावाद में क्या होता है कि द ओनली थिंग टू डू इज दैट देयर इज नथिंग टू डू, एक ही चीज करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सब क्रिया माया है। एक ही चीज बोलने के लिए कि कुछ भी बोलने के लिए नहीं है, एक ही चीज सोचने के लिए कुछ भी सोचने के लिए नहीं है, क्योंकि मन इंद्रियों से जो भी कार्य करते हैं वो सब माया है। सो इंग्लिश में कहते हैं द नेम्स ऑफ द मायावादीज एंड विद आनंद एंड देयर आनंद एंड्स विद देयर नेम, कि उनके नाम का अंत आनंद से होता है और उनका आनंद उनके नाम में अंत हो जाता है। उनके लिए कुछ आनंद वास्तव में है ही नहीं, क्योंकि जो आनंद के स्रोत है परम पुरुषोत्तम भगवान और उनकी भक्ति उसको नकार देते हैं। तो फिर भी तो शंकराचार्य आए, उन्होंने तो बातचीत हुई, बोले कि हाँ आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, शंकराचार्य बोले, और अगर आप इस तरह से भक्ति करते रहोगे तो अगले जन्म में आप हिंदू जन्म लोगे और फिर आप जगन्नाथ जी का दर्शन कर सकते। तो नहीं बोल दिया। फिर उसके बाद में जब वो जा रहे थे, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, मैं कि आप तो शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत का पालन करते हो तो आप ये विग्रह की पूजा क्यों कर रहे हैं। शंकराचार्य बड़े नॉनशैलेंटली, मतलब बड़ा साधारण से बोल गया, राधा कृष्ण की पूजा कौन कर रहा है, मैं तो खुद की पूजा कर रहा हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये ब्रह्म है, ब्रह्म अर्पण ब्रह्म हवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा हो तब ब्रह्म तेन गंतव्य ब्रह्म कर्म समाधि ना। चौथा अध्याय का 24वां श्लोक है वो, कि वो पूरा ब्रह्म में डाल देता है, ब्रह्म ब्रह्म 7 बार आता है उसमें, ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा हो तम ब्रह्म तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि ना, 6 बार आता है ब्रह्म। तो क्या उसका मतलब है कि सब कुछ आध्यात्मिक है, पर इसका मतलब ही सब कुछ भगवान है। तो मायावादी भी भक्ति करते, वो भी शायद हरिनाम ले सकते, तो भक्ति ठाकुर अपने नाम रहस्य कृष्ण चैतन्य शिक्षामृत इन ग्रंथों में बताते हैं कि मायावादी अगर भगवान का नाम लेते हैं तो वो प्रतिबिंब नामाभास है। नामाभास मतलब जब सूर्य अभी उग रहा है तो सूर्य की रोशनी से क्या होता है, सारा अंधेरा दूर होने लगता है, पर सूर्य की पूरी रोशनी नहीं आई है, तो वैसे ही नामाभास मतलब अभी नाम हमारे हृदय में उजागर हो रहा है, पूरा जब उजागर हो जाएगा तो वो क्या है, वो शुद्ध नाम है, तो अभी उजागर हो रहा है वो। पर जो मायावादी नाम लेते हैं भगवान का, वो नामाभास भी नहीं है, वो प्रतिबिंब नामाभास है। मतलब अगर सूर्य उग रहा है, उसका प्रतिबिंब अगर हम पानी में देखते हैं तो दिखने के लिए सूर्य जैसे लगता है, पर उससे कोई रोशनी या गर्मी नहीं आ सकती है, क्योंकि वो प्रतिबिंब है। तो उस तरह से जब मायावादी हरिनाम लेते हैं तो क्या उससे शुद्धिकरण होता है, हो सकता है, पर वो कहां तक जाएंगे, सत्वगुण तक जाएंगे, सत्वगुण से थोड़ा परे ब्रह्म तक जाएंगे, उससे उनके हरिनाम के जप से वे कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रेम चाहते भी नहीं है, तो वो प्रतिबिंब नामाभास है। पर तो उनकी माया की संकल्पना क्या है कि वास्तव में एक ही अस्तित्व है, क्या है, ब्रह्म, सर्वम खल्वमिदं ब्रह्म, जो श्रुतियों में उपनिषदों में चांडों के उपनिषद शायद लोग बोलते सब कुछ ब्रह्म ही है और कुछ है ही नहीं, पर फिर मैं हूं या आप है, ये सब भौतिक जगत है, ये सब माया है। तो ये सब माया है का मतलब क्या है कि अभी वैष्णव के भगवत के आधार पर समाज क्या है कि अगर भगवान सत्य है तो भगवान से जो भी आ रहा है वो भी सत्य है। अहम सर्वस्य प्रभो भगवान कहते हैं, मत्तः सर्वम प्रवर्तते, 2 बार वही चीज भगवान बता रहे, सब कुछ मुझसे, मैं सबका स्रोत हूं और सब कुछ मुझसे आता है। वास्तव में ये वही चीज को 2 बार बता रहे हैं भगवान, क्यों, क्योंकि जोर देने के लिए। तो अगर परम सत्य से कुछ आ रहा है तो वो भी सत्य ही है, पर मायावादी कहते हैं कि नहीं, ये जगत सत्य नहीं है, ये केवल कहते हैं ये व्यवहारिक सत्य है, इसके परे जो पारमार्थिक सत्य है वो क्या है, सिर्फ ब्रह्म है। तो प्रभुपाद जी के शिष्य थे, वे भक्ति में आने के पहले वो भी मंत्र जप कर रहे थे, वो एक मायावादी गुरु से मिले थे, वो क्या जप कर रहे थे, आई एम एवरीथिंग एवरीथिंग इज मी, आई एम एवरीथिंग एवरीथिंग इज मी, आई एम एवरीथिंग एवरीथिंग इज मी, इसका जप कर रहे थे, मैं ही सब कुछ हूं सब कुछ मैं ही हूं, मैं ही सब कुछ हूं सब कुछ मैं ही हूं। अब ये ऐसे सिर्फ कल्पना करने से क्या होने वाला है, वास्तव में हम सब कुछ नहीं है, पर ये उनकी धारणा है। तो उनका क्या सोचना है कि न, तो मैं जो सोच रहा हूं कि मैं एक व्यक्ति हूं ये माया है, आप जो सोच रहे हैं कि एक व्यक्ति है वो भी माया है, ये हम देख रहे हैं ये सोफा ये सब भी माया है, यहां तक भी जो भगवान है वो भी माया है। तो वो प्रभुपाद जी से मायावादी को कहते हैं वो एथिस्टिक है, वो नास्तिक है, क्योंकि वो भगवान का अस्तित्व नहीं मानते, पर वो कहते हैं कि मैं हम नास्तिक नहीं है, वी आर नॉट एथिस्टिक, वी आर ट्रांसथिस्टिक, बोलते हैं कि हम भगवान के भक्ति के पर जाते हैं और फिर भगवान में लीन हो जाते हैं। पर ये संकल्पना है, इस शास्त्रों में इसका कोई आधार नहीं है। तो हम अभी क्या करेंगे, भगवत गीता में अभी मायावादी कह सकते हैं कि हमारा तत्व ज्ञान है, वैष्णव कहेंगे हमारा तत्व ज्ञान है, तो उसका निष्कर्ष कौन निकालेगा, शास्त्र से निकालता है। इसे क्या होता है, ये एक कोर्ट केस है, कोर्ट केस में एक गुनहगार का एक लॉयर होता है और एक जो उसको साबित करना है गुना उसका लॉयर होता है, तो दोनों वही जो इंडियन लॉ कोड है जो नियमों का संग्रह है उसके आधार पर चर्चा करते हैं। तो जो मायावाद की संकल्पना है माया, वो क्या है और क्या वो शास्त्रों पर आधारित है। अभी शास्त्र तो विशाल है, वेदांत सूत्र है, उपनिषद है, पर हम एक शास्त्र के आधार पर देख सकते हैं, भगवद्गीता पे देखेंगे। तो भगवद्गीता में माया यह शब्द 5 बार आता है, 4 श्लोकों में आता है, 1 श्लोक में 2 बार आता है, तो इस तरह से 5 बार यह शब्द आता है। तो अगर हम देखते हैं क्या संदर्भ में माया यह शब्द इस्तेमाल किया है, तो उससे हम ये कैसे मायावादियों की माया की धारणा भ्रांत है, कैसे वैष्णव की जो समझ है कि माया के 2 प्रकार है, एक है योग माया, दूसरी है महामाया, ये दोनों भी हम समझ सकते हैं। तो मैं श्लोक बोलूंगा, उसके आपके आप मेरे पीछे दोहराइए और फिर उससे चर्चा करते हैं। तो जो माया की संकल्पना है चार जगह आती है भगवदगीता में, 4.8, 7.14, 7.25 और 18.61। तो एक एक करके हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो जो सबसे पहले चौथे अध्याय के आठवें श्लोक में, अजो आप मेरे पीछे दोहराइए, अजो पिसन व्ययात्मा भूतानामीश्वरो पिसन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाया संभवामि आत्ममायया। तो ये श्लोक आता है, ये श्लोक भगवान का जो अवतार हो रहा है उसके वर्णन के समय आता है। इसके पहले के दो श्लोक है यदा यदा ही धर्मस्य और परित्राणाय साधुना, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है दोनों। तो इसके बाद में भगवान क्या कह रहे हैं, अभी जब मैं अवतार लेता हूं तो किस तरह से अवतार लेते हैं भगवान, इसका वर्णन कर रहे हैं यहां पे भी। तो मायावादी का कहना है कि वास्तव में उनको मायावादी क्यों कहा गया है, क्योंकि वे कहते हैं कि भगवान का रूप भी माया है, भगवान का भी रूप माया है और हमें उस रूप के परे जाना है। तो भगवान की पूजा क्यों करनी चाहिए फिर, बोले कि जब तक हम रजोगुण तमोगुण में हैं तब तक क्या है, हम वो जो निर्विशेष निराकार ब्रह्म का चिंतन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए अभी हम ये रूप का चिंतन करें और फिर रूप के बाद में परे चले जाएं। तो वास्तव में ये कैसे है कि एक मायावादी संस्था है, वो कहते हैं कि आपका जो इष्ट देव है उसका आप ध्यान करो और ध्यान करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और समाधि कैसे मिले आपको कैसे पता चल जाएगा कि जब आपके ध्यान की शक्ति से जो विग्रह है वो टुकड़े 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 होकर गिर जाएगा, तो फिर आप समाधि प्राप्त कर लिए, आप विग्रह के परे जाकर मूर्ति के परे जाकर जो निर्विकेश निरूप है उसके पास जाए। तो अभी देखिए कितना ये असली धारणा है जो मुसलमान जो आक्रमण करने वाले राजा थे वो भारत में आके मंदिरों में आके प्रत्यक्ष किया, शारीरिक रूप से विग्रहों के पे आक्रमण करते थे वे, पर जो मायावादी है वे एक बौद्धिक रूप पे आक्रमण करते हैं, और बौद्धिक रूप से जो आक्रमण होता है तो और खतरनाक है, क्योंकि क्या है अगर कोई विग्रह को डेसिक्रेट भी कर लेता है, कोई मंदिर को तोड़ देता है तो मंदिर पुनः बांध सकते हैं, पर अगर बौद्धिक रूप पे श्रद्धा को नष्ट कर दिया तो फिर उस श्रद्धा को वापस बांधना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए हम समझ सकते हैं कि हमारे आचार्य है मायावादी के प्रति इतने इतने हेवी इतने जोर से क्यों उसका खंडन करते हैं। तो हाँ ये सत्य है कि भगवान का एक निरूप अंग भी है और एक ब्रह्म ज्योति है जहां पर कोई रूप नहीं है, वो सत्य है, पर भगवान का रूप ये माया की उत्पत्ति नहीं है, ये माया के परे है। तो इसीलिए जो मायावाद का खंडन करने के लिए माधवाचार्य आए थे तो उनका जो तत्व ज्ञान है उसको कहते हैं तत्ववाद। तो मायावाद और तत्ववाद, तो भगवान का जो रूप है तत्व है वो माया नहीं है। तो अभी भगवान यहां पे क्या कह रहे हैं, वो बता रहे हैं कि मैं यहां पे आ रहा हूं तो मेरा जो शरीर है मैं जिस अज, ऐसे नहीं कि मैं जन्म लेता हूं, मैं वास्तव में अजन्मा हूं, तो अव्यय मैं कभी बूढ़ा नहीं होता हूं। अब ये जो लक्षण है ये आत्मा के भी है, आत्मा भी अज है आत्मा भी अव्यय है, शरीर का जन्म होता है शरीर का व्यय होता है, पर आत्मा और भगवान में क्या फर्क है वो अगले श्लोक में बताया। भूतानाम ईश्वरोपि सन, कि सब जो असाधारण भूत है जीवात्मा है उनका मैं ईश्वर हूं, ईश्वरोपि सन। और फिर मैं कैसे आता हूं, प्रकृति स्वाम अधिष्ठाया, मैं खुद की प्रकृति से आता हूं, मतलब मैं माया के अंदर नहीं आता हूं, संभवामी आत्म, भगवान दो बार वो शब्द स्वाम, प्रकृति स्वाम और आत्म मायाया, मतलब भगवान कह रहे हैं कि ये मेरी प्रकृति है ये मेरी माया है, उसके आधार पर उसके अनुसार मैं आता हूं, न कि मैं माया के अधीन जाता हूं, ये माया मेरे अधीन रहती है। जबकि मायावादी का सुझाव है कि भगवान जब आते हैं तब वे माया के अधीन हो जाते हैं। तो एक बार जब प्रभुपाद जी भारत में पाश्चात्य देश में जाने के पहले प्रचार कर रहे थे तो बॉम्बे में थे, तो बॉम्बे में मायावादी लोग कुछ भागवत सप्ताह कर रहे थे, जो भागवत सप्ताह कर रहे थे उसमें वे जो भगवान की रासलीला है दशम स्कंद पे कर रहे थे, और रासलीला का बहुत ही भ्रांत बहुत ही गलत अर्थ बता रहे थे। वो बोल रहे थे किस तरह से कि भगवान वास्तव में ये गोपियां इतने आकर्षक थी कि भगवान उनके जकड़ में आ गए और वो काम वासना में होके उन्होंने ऐसा कर दिया। तो कभी कभी भगवान भी माया में आ जाते हैं। जब प्रभुपाद जी ने सुना, प्रभुपाद जी बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने खत लिखा, उनको बोले कि जो भगवान की रासलीला क्या है, इसका सवाल परीक्षित महाराज ने पहले ही पूछा है दशम स्कंद में, और सुखदेव गोस्वामी जवाब भी दिया है। आपको कुछ भ्रांत कल्पना इसके बारे में करने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी बोले कि अगर आप ऐसे भ्रांत कल्पना करते रहोगे तो हम आपके खिलाफ कोर्ट केस कर देंगे। राधा गोकुल आनंद भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, गौर निसाय चंद्र भगवान की। तो दुर्भाग्यवश अभी प्रभुपाद जी जो थे वो इतने विख्यात नहीं थे, दुनिया को तब तक प्रभुपाद जी की महिमा पता नहीं थी, तो उन्होंने प्रभुपाद जी की अनसुनी कर दी। पर यहाँ पे पॉइंट यह है कि जो मायावादी लोग हैं वो कहते हैं कि भगवान कभी कभी माया में आ जाते हैं, क्योंकि भगवान का शरीर है वो भी माया की उत्पत्ति है। तो ऐसे नहीं, भगवान कह रहे हैं कि मेरी माया के आधार पे मैं प्रकट हो रहा हूं, मैं माया के अधीन नहीं जा रहा हूं, माया मेरे अधीन है। और इसका ही आगे पुष्टिकरण अगले श्लोक में, सातवें माया शब्द है अगली बार आता है भगवद गीता में सातवें अध्याय के 14वें श्लोक में, विख्यात श्लोक है। इसमें भगवान बताते हैं कि मैं माया में नहीं हूं, अगर कुछ संदेश है किसी को तो मुझे मेरी आचरण ग्रहण करने से आप माया के परे चले जाओगे। तो हम दोहराएंगे श्लोक, दैवी ऐशा गुणमयी, ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मम माया दुरत्यया। तो ये पहला भाग है, इसके दो भाग है। पहले भाग में भगवान बता रहे हैं कि मेरा और माया का क्या संबंध है, दूसरे भाग में बताएंगे कि आपका और माया का क्या संबंध है और आप इस संबंध के परे कैसे जाएंगे। तो पहले बता रहे हैं दैवी, ये जो माया है ये दैवी है, दिव्य है। तो कभी कभी लोग पूछते हैं कि अगर भगवान ने ही माया बनाई है तो अगर हम कुछ गलत कार्य करते हैं तो माया प्रलोभन कर रही है, भगवान ने ही माया बनाई है तो भगवान जिम्मेदार है, भगवान ने इतने सारे काम वासना को उत्पन्न करने वाले सुंदर रूप बनाए हैं, लोभ को उत्पन्न करने वाले सोना चांदी धन बनाया है, तो फिर अगर बाद में हमें काम क्रोध आ गया तो भगवान जिम्मेदार है। अगर भगवान नहीं चाहते कि हम कुछ बुरा कार्य करें तो भगवान ने माया की उत्पत्ति क्यों क्यों है। तो ये कैसे है, ये समझने के लिए हमें जो कोई परीक्षा होती है स्कूल में, तो उसमें कभी कभी मल्टीपल चॉइस पेपर होता है। मल्टीपल चॉइस मतलब अ ए बी सी डी, पांच ऑप्शन होते हैं, उसमें से एक ऑप्शन चूज करना होता है, एक पर्याय चूज करना होता है। तो अगर वो जो पर्याय चूज करना हम उसको सही से चुनते हैं तो हमको मार्क्स मिलते हैं, गलत चुनते हैं तो मार्क्स चले जाते हैं। तो अभी हम देखेंगे बाह्य दृष्टि से तो पांच पर्याय है, उसमें से चार गलत है और एक सही है। तो अब मतलब हम देखेंगे कि तो संभावना प्रोबेबिलिटी जो है तो 80% संभावना है कि जो व्यक्ति है गलत चुनेगा, और फिर गलत चुनेगा तो टीचर को जाते बोल सकता है टीचर आपने ही वहां पे गलत रखा था जवाब, तो मैंने चुन लिया, आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है, ये मेरी गलती नहीं है, आपकी ही गलती है। टीचर कहेगा कि मैंने तुमको पढ़ाया किया, पढ़ाई दी किया था तुमने, मैंने तुमको सिखाया था, तुम सीखे नहीं। तो भले ही टीचर गलत पर्याय भी देगी तो भी विद्यार्थी की जिम्मेदारी है कि सही पर्याय चुने। तो भगवान हमें गलत पर्याय क्यों देते हैं, ये देखने के लिए कि हमने जो भगवदगीता शास्त्र में सिखाया गया है वो समझा है कि नहीं, वो सीखा है कि नहीं। तो अगर वो गलत पर्याय चुन के विद्यार्थी फेल हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी विद्यार्थी पे है, वो शिक्षक पे नहीं है। ठीक उसी तरह से अगर हम कुछ गलत चुनते हैं तो उसकी जिम्मेदारी हम पे है, क्योंकि भगवान ने शिक्षण दिया है। पर टीचर कभी गलत चुनेगी नहीं, क्योंकि टीचर ने वो सेट किया है। तो भगवान कह रहे हैं मम माया दुरत्यया, ये मेरी माया है, पर किसके लिए दुरत्य है, मेरे दुरत्य नहीं है, आपके लिए दुरत्य है। इसलिए अगले अगले पाठ में बता रहे मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्तिते, तो आप माया के परे चले जाओगे, मायामेतां तरन्तिते। कि तो इस श्लोक में माया दो बार आता है, पर दोनों बार में कैसे आता है कि ये हायरार्की, ईश्वर माया और जीव। तो माया जीव से बड़ी है पर भगवान माया से भी बड़े हैं। तो भगवान माया के अधीन नहीं आते हैं, हम माया के परे आ सकते हैं भगवान के अधीन होकर। तो इसीलिए जो दो श्लोक देखे तो मायावादी की धारणा है कि भगवान ये माया की उत्पत्ति है, ये पूर्व से गलत है, उल्टी जो माया है वो भगवान की उत्पत्ति है। तो अभी अगला श्लोक जो है 7:25 उसे भगवान बताते हैं कि यहां पे बताया उन्होंने कि भगवान को माया हमें नियंत्रित करती है। तो माया और भगवान का क्या संबंध है वो श्लोक में बताते हैं। नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। नाहं प्रकाश सर्वस्य, मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता हूँ। क्यों? योग माया समावृतः, जो मुझे सम्यक रूप से ढक लिया है योग माया ने। और कौन समझ नहीं पाता है? मूढ़ोऽयं नाभिजानाति, जो मूढ़ व्यक्ति है वे समझ नहीं पाएगी। क्या समझ नहीं पाएगी? कि मैं अजा हूं, मैं अव्यय हूं। जो पहले 4.8 में बताया था अजो पिसे अव्यय आत्मा, वो यहाँ पे दोहरा रहे कि मैं जो अजय हूं अव्यय हूं, ये आप समझ नहीं पाएंगे। क्यों समझ नहीं पाएंगे? क्योंकि मूढ़ा, मूढ़ा मतलब जो लिटरल अर्थ होता है उसका, वो है गधा। और वह प्रायोगिक अर्थ होता है कि जो व्यक्ति का मानव शरीर भी हो पर उसकी गधे जैसी बुद्धि है। तो मानव शरीर की जो विशेषता है कि हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, तो मानव शरीर की विशेषता का हम तभी उपयोग कर सकते हैं जब हम एक विशेष पद्धति से ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो है शब्द प्रमाण। अगर हम मानव शरीर में रहकर प्रत्यक्ष और अनुमान से ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे जैसे जानवर प्राप्त करते हैं, तो फिर मानव शरीर का हम कुछ उपयोग नहीं कर सकते। ह्यूमन फॉर्म इज स्पेशल बट इट्स स्पेशलिटी इज यूटिलाइज व्हेन वी एक्वायर नॉलेज यूजिंग अ स्पेशल वे। तो अब मानव शरीर में भी रहेंगे पर हम साधारण पद्धति से ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, प्रत्यक्ष अनुमान से जो दिखता है उस पर विश्वास करूंगा, तो फिर क्या होगा? हम मानव जीवन का जो विशेषता है उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो जो शब्द ज्ञान है, शब्द से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वो क्या होता है? वो माया के आवरण के पर जाता है। तो यहाँ पे भगवान योग माया शब्द का इस्तेमाल करते हैं, महामाया का इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि वो बता रहे हैं कि कौन आवृत है। वो ये नहीं बता रहे हैं कि जीवात्मा आवृत है, बोले मैं आवृत हूं। ना हम प्रकाश सर्वस्य, मैं प्रकाश नहीं हूं क्योंकि योग माया समावृत, मैं योग माया से आवृत हो गया हूं। तो कैसे आवृत हो गए भगवान? भगवान स्वे इच्छा से आवृत होते हैं। तो ये जो है योग माया, वो क्या है? वो वास्तव में योग मतलब भगवान से संबंध, भगवान से करीब जाना, उसको योग कहते हैं। तो एक माया है जो भगवान की विस्मृति कराती है, किस तरह से? ताकि हम खुद को भगवान समझते हैं और भोग करना चाहते हैं। दूसरी माया है, वह भी विस्मृति कराती है। वो किसकी विस्मृति कराती है? भगवान के दो पहलू है, गॉड्स ग्रेटनेस एंड गॉड्स स्वीटनेस, भगवान की महिमा और भगवान का माधुर्य। तो योग महामाया जो है, ये दोनों की विस्मृति करा देती है हमको। पर जो योग माया है वो भगवान की महिमा की विस्मृति करा देती है, ताकि भगवान की जो मधुरता है, भगवान का माधुर्य है, वही याद रहता है। जैसे प्रभुपाद जी शास्त्र में बता रहे हैं कि यशोदा माई, अभी जो भी मैंने देखा कि मेरा पुत्र भगवान है, उसके मुंह में मैंने देखा कि सारा ब्रह्मांड है, ये सब भूल जाने दो। मैं क्या, ये तो मेरा पुत्र है, मैं उसका चुंबन करूंगी, मैं उसको अपना सन का दूध पिलाऊंगी, उसको गोद में बिठाऊंगी, ये मेरा पुत्र है। यह जो भाव है वह योग माया से उत्पन्न होता है। तो वास्तव में आध्यात्मिक दृष्टि से जो जितना ज्यादा महामाया से आवृत है वो उतना ज्यादा माया में है, उतना मोह में है। पर जो जितना ज्यादा योग माया से आवृत है वो उतना उच्च स्तर का भक्त है। जितना जो योग माया से आवृत है वो उतना ऊंचे स्तर का भक्त है। इसीलिए ललित माधव मेहर रूप गोस्वामी पाद बताते हैं कि वास्तव में जो भगवान का द्वारका लीला है और भगवान की वृंदावन लीला है, तो इनमें फर्क है। भगवान का जो माधुर्य है वृंदावन में अधिक दिखाई देता है और उनका माधुर्य द्वारका में कम दिखाई देता है। तो जो द्वारका में राधा रानी, जो वृंदावन में राधा रानी है, वो द्वारका में वास्तव में रुक्मिणी नहीं है। राधा रानी जो वृंदावन में है वो द्वारका में सत्यभामा है, और वृंदावन में जो चंद्रावली है वो द्वारका में रुक्मिणी है। तो ऐसे क्यों? क्योंकि जो रुक्मिणी देवी है वो हमेशा, उनको ध्यान रहता है कि भगवान मेरे स्वामी है और भगवान कहीं मुझे छोड़ के नहीं चले जाएंगे। तो उज्जवल नीलमणि में रूप गोस्वामी पाद बताते हैं कि दो प्रकार के भाव होते हैं भगवान के प्रति, मदीयत्व और तदीयत्व। तदीयत्व मतलब मैं आपका हूं, मैं आप मैं आपकी संपत्ति हूँ, आप ऐसा जो भी करना चाहेंगे वो कीजिए। जैसे ये भाव चैतन्य महाप्रभु बताते हैं, आशीष व पादरताम पिनष्टुमा, आप जो चाहे करना चाहेंगे वो कर सकते हैं, मैं आपके शरण में हूँ। ये जो भाव है कि मैं आपका हूँ, तो ये बहुत ऊंचे स्तर का उसकी स्तर की शरणागति है। पर इससे ऊंचे स्तर की शरणागति है कि आप मेरे हो, वो है मदीयत्व। तो रूप गोस्वामी फाद बताते हैं कि जो तदीयत्व का भाव है वो घृत रस है, और जो मदीयत्व का भाव है वो मधुरस है। घृत रस मतलब घी। अभी घी है, घी बड़ा अच्छा है, पर सिर्फ घी खा नहीं सकते कोई, किसे कुछ और डालना पड़ता है फिर वो खाना खा सकते हैं। पर जो मधु है, जो शहद है, हनी है, वो हम ऐसे ही खा सकते हैं। तो जो राधा रानी का प्रेम है भगवान के प्रति, वो क्या है, वो मधुरस है। जबकि जो चंद्रावली का प्रेम है वो घृत रस है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि भागवतम के दशम स्कंद के 60वें अध्याय में रुक्मिणी और कृष्ण का संवाद है। उसमें कृष्ण बोलते हैं कि हे रुक्मिणी, मैं तो एक गोपा हूँ, मेरा कोई राज्य नहीं है, मैं कंगाल हूँ, और तुमसे विवाह करने के लिए इतने बड़े राजा आए थे, उनके बड़े बड़े संपत्ति थी, और वैसे वो आपके इतने आसक्त थे कि वो आपके हाथ में गुलाम बन के रहते थे, पर मैं तो क्या, मैं तो सुसंस्कृत नहीं हूँ, स्त्रियों को वैसे पसंद करने का मुझे पता नहीं है, और वैसे भी मैं तो अनासक्त हूँ, स्त्री पुत्र परिवार इसमें कुछ ज्यादा रुचि नहीं है मेरी, तो मुझे लगता है आपने बहुत बड़ी गलती की मुझे चुनके। तो जब रुक्मिणी देवी सुनती है तो एकदम डर जाती है, वो सोचती है कि अभी क्या होगा, ऐसे लगता है कि मेरे स्वामी ये ठुकरा रहे हैं, ये छोड़ के चले जाएंगे, तो वो बहुत डर जाती है और बेहोश हो जाती है। और तभी भगवान को समझ आता है कि मैं तो हंसी मजाक कर रहा था, पर ये हंसी मजाक के भाव में नहीं लिया इन्होंने, कड़ी गंभीरता से ले लिया। तो फिर क्या करते हैं, वो फिर उनको थोड़ा पानी छिड़ाते हैं और फिर बड़े मधुर शब्द से उनको सांत्वना करती है। पर इसके विपरीत हम देखते हैं सत्यवाहा का भाव क्या है, जब जो जो लीला है पारिजात हरण की लीला, उसका ब्रह्म विवर्त पुराण में विस्तारित वर्णन है। तो वहां पे बताते हैं कि कैसे जब नारद मुनि आते हैं, नारद मुनि भगवान की लीला को और मधुर करने के लिए बहुत दक्ष है। तो नारद मुनि आते हैं, तभी भगवान अपनी प्रधान रानी जो है रुक्मिणी, तो रुक्मिणी सके साथ होते हैं वो। तो अभी क्या है कि जो आदर्श पति और आदर्श पत्नी है, तो उसमें क्या होना चाहिए कि पत्नी जो है हमेशा अपने पति के प्रति सबमिसिव, आदेश पालन करने वाली होनी चाहिए। पर जो राधा रानी है वो भगवान को आदेश देती है, भगवान का आदेश नहीं पालन कर सकती। तो इसलिए भगवान जब राजा होते हैं तो उनकी प्रधान रानी जो होती है रुक्मिणी, वो एक आदर्श रानी के रूप में चंद्रावली वो भूमिका निभा सकती है। पर राधा रानी जो है वो सत्यभामा है, सत्य का अर्थ है स्वभाव और भामा का अर्थ है क्रोध, तो क्रोधी स्वभाव की जो है वह सत्यभामा। तो फिर जब भगवान आते हैं तो नारद में आते हैं और फिर भगवान को बोलते हैं, भगवान मैं अभी स्वर्गलोक से आ रहा हूँ और आपके लिए पारिजात लेके आया हूँ। तो पारिजात लेके आते हैं तो रुक्मिणी देवी उनके बाजू में बैठी होती है, तो भगवान पारिजात वृक्ष पारिजात का फूल लेते हैं और रुक्मिणी देवी को प्रदान कर देते हैं। रुक्मिणी देवी प्रसन्न हो जाती है और फिर भगवान बोलते हैं कि वास्तव में स्वर्गलोक में बड़ा उपद्रव मच गया है, क्योंकि ये जो असुर है नरकासुर सबको परेशान कर रहा है, इसने स्वर्गलोक पे आक्रमण करके स्वर्ग की लोगों के जो राजा राजकन्या उनकी बेइज्जती कर दी है। भगवान वो माता आदित्य जो है उनका जो उनकी जो कुंडल है, ये जो वरुण का छाता है, सब छीन लिया है, तो आप कृपया जाके कुछ कीजिए उसके बारे में। भगवान बोलते जरूर मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे तो मैं युद्ध के लिए जाऊंगा। तो फिर तभी नारद मुनि निकल जाते हैं, नारद मुनि जाते हैं सीधा किसके पास, सत्यभामा के पास। सत्यभामा का जाके बोलते हैं कि विनाश हो गया। सत्यभामा बोलती है, सत्यभामा उनके साथ उनकी सहचरी होते भानुमती, क्या बात है, क्या हो गया। और नारद मुनि बोलते हैं कि भगवान ने आपको त्याग दिया, भगवान ने आपको ठुकरा दिया। क्या मतलब, हाँ जो सत्यभामा का हृदय का धड़कन बढ़ जाती है, क्या हो गया। बोलते हैं कि मैंने स्वर्गलोक से पारिजात लाया था, आपके लिए लाया था, मैंने गया था, मैंने भगवान को दिया, मैं सोचा कि भगवान आपको देंगे, पर भगवान तो लगता है आपको भूल गए, आप यहाँ पे आपके आपके महल में तो क्या है आराम कर रहे हो, और भगवान का हृदय वहां पे रुक्मिणी देवी ने जीत लिया है, और भगवान ने मैंने जो आपके लिए बाजार लाया था वो भगवान ने रुक्मिणी देवी को दे दिया है। और जैसे ही ये सुनते हैं तो वहां पे सत्यभामा बेहोश हो जाती है, सत्यभामा बेहोश हो जाती है, और फिर भानुमती गए अब क्या हो गया, फिर पानी ठहर जाती है, होश में आ जाती है, जब होश में आ जाती है तो फिर क्या कुछ करना चाहिए, बोलते हैं कि बोलते कि मैं मेरे स्वामी को मेरे महल में लेके आऊंगी और मेरे साथ जब रहेंगे वो तो फिर उनका मेरे प्रति जो स्नेह है बढ़ जाएगा। तो नारद बोलते वो तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। क्यों क्यों नहीं रहेंगे? बोलते कि नहीं वो तो अभी स्वर्गलोक में जा रहे हैं, वो तो अभी वो स्वर्गलोकों के लोगों की मदद करने के लिए वो जा रहे हैं नरकासुर पे आक्रमण करने के लिए। तो सत्यभामा बड़ी क्रोध हो जाती है, सत्यभामा बोलती है वो सीधा भगवान के महल के और जाने के बारे सोच रहे होते तभी भगवान ही वहां पे आ जाते हैं, कि भगवान सोच रहे होते कि मैं उनसे विदा लेकर भी जाऊंगा। जब देखते तो सत्यभामा को देख के ही भगवान समझ जाते कि ये बहुत क्रोधित हो गई है। तो सत्य तो भगवान वहां पे नारद मुनि को देखते हैं, जैसे नारद मुनि को देखते हैं वो समझ जाते हैं क्या हुआ, नारद मुनि ने क्या किया है। सत्य वहां बड़ी रूठी होती है, तो वहां रूठी होती है तो भगवान बोलते हैं कि आप इतनी नाराज क्यों, सत्य वहां तुम्हें पता है मैं नाराज क्यों, क्या बात है? और वो बोल दिया कि आपने जो पारिजात का फूल लाया वो आपने रुक्मिणी को दिया मुझे नहीं दिया, तो इतनी छोटी सी बात है। तो भगवान भी बड़े बुद्धिमान है, भगवान बोलते हैं कि वास्तव में जब वो पारिजात का फूल मुझे मिला मैंने पहले आपके बारे में सोचा, पर आप मेरी इतनी प्रिय पत्नी हो कि मैं आपको एक फूल से कैसे संतुष्ट कर सकता हूं, तो मैं तो आपके लिए पूरा पेड़ लाने की योजना कर रहा था। तो अब भगवान भी बड़े बुद्धिमान है, मैं वास्तव में भी स्वर्ग जा रहा हूं आपके लिए पेड़ लाने के लिए, तो और छोटा सा एक फूल था वो मैंने रुक्मिणी देवी को दे दिया। तो अभी भगवान बड़े बुद्धिमान है, दक्ष है, तो दक्ष तो सत्यभामा को मना लेते हैं। जब सत्यभामा को मना लेते हैं सत्यभामा सोचने लगती है, बोलते हैं फिर भी मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं अभी भगवान पकड़ेगा, अच्छा मैं पहले स्वर्ग में नहीं जाने वाला हूँ, पहले मैं युद्ध करने जाने वाला हूँ, और फिर युद्ध करने के बाद मैं इसको वध नरकासुर का वध करके फिर बाद में मैं स्वर्गलोक में जाऊंगा। तो नहीं मैं आपके साथ आऊंगी। बोले नहीं नहीं तो मैं रणक्षेत्र में जा रहा हूँ, आप कैसे आ सकती है? नहीं नहीं क्या आप मेरा संरक्षण नहीं कर सकते? तो भगवान का भी अभी जो पति भाव है बोले हाँ क्यों संरक्षण नहीं कर सकते, आओ तुम मेरे साथ। तो फिर जब वो देर होता है उनको तो फिर तो सत्यभामा तैयार हो जाती है, तो नारद मुनि बोलते हैं कि हे तुम कैसे अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हो? नारद मुनि भगवान को भी थोड़े उकसा रहे, वो कहते कैसे अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हो आप तो आपके भक्त वहां पे बेचैन पड़े हुए, आप आपकी पत्नी का इंतजार कर रहे हो, आपको पता है स्त्रियों को तैयार होने को 6 महीने लग जाएंगे, तब तक क्या देवों को भगवान देव सब देवों का विनाश हो जाएगा। बोले नहीं नहीं आ जाएगी सत्यभामा, सत्यभामा आती है, फिर वे अपने गरुड़ पे बैठ के उड़ते हुए जाते हैं, और फिर भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते भगवान सत्यभामा के सामने अपना सारा शौर्य दिखा के असुर को हरा देते हैं, और फिर स्वर्गलोक में जाते हैं। स्वर्गलोक में जब जाते हैं तो ये जो कभी कभी क्या ये जो कहानियां है नित्य है, पर अलग अलग पुराणों में इसका अलग अलग वर्णन होता है थोड़ा बहुत। तो भगवान जाते हैं, सारा जो आदिति के कुंडल है बाकी सब देवों से जो भी चुराया हुआ है वो सब प्राप्त कर लेते हैं, और फिर स्वर्गलोक में जाते हैं। स्वर्गलोक में जाते हैं और इंद्र बड़ा प्रसन्न होता है, धन्यवाद देता है, भगवान जाके आदिति को प्रणाम करते हैं, और फिर लौट के आते हैं, और लौट के आते हैं फिर सत्यभामा वापस उठ जाती है। हे स्वामी आपने मुझे पारिजात वृक्ष दिया नहीं, ओ मैं भूल गया। अच्छा नारद मुनि भगवान तुम जाके पारिजात वृक्ष लेके आओ स्वर्ग से। तो नारद मुनि सोचते थोड़ा और मुझे लीला देखनी है, तो बोलते हैं वो पारिजात वृक्ष लेके नहीं आते, वो सीधा स्वर्ग के दरबार में चले जाते हैं, और इंद्र को बोलते हैं कि ये आदेश दिया है आपको कृष्ण ने कि एक पारिजात वृक्ष उनको अपनी पत्नी को प्रदान करने के लिए चाहिए, और ये इंद्र के साथ शशि देवी बैठी है उनके सामने बोलते हैं। तो अभी कोई भी व्यक्ति को अपने पत्नी के सामने किसी और से आदेश सुनना अच्छा नहीं लगता है, तो शशि देवी तुरंत बोलती है ये तो सारा इंद्र के जो पेड़ इंद्र के सारे वृक्ष है वो तो स्वर्गवासियों के लिए है, पृथ्वीवासियों के लिए नहीं है, आप नहीं ले सकते इसको। तो इंद्र सोचने लगते ठीक है, बोले नहीं नहीं मैं नहीं देख सकता इसको, तो क्या मैं कृष्ण भगवान को जाके बोल दूं? हाँ बोल दो बोले। तो फिर जब भगवान वापस आते, जब नागदेव वापस आते हैं तभी भगवान अभी सत्यभामा के साथ होते हैं। सत्यभामा सोचती है कि मैं भगवान को मेरे साथ ही रखूंगी, रुक्मिणी को जाने नहीं दूंगी। तो जब वो साथ में होते हैं तो बोलते हैं, तो भगवान बोलते हैं हे रुक्मिणी, हे सत्यभामा, आपका अपमान कर दिया शची देवी ने। क्या हुआ? सत्यभामा वापस कर दिया, उनका क्रोधी स्वभाव ही है। ये क्रोधी स्वभाव भी कैसे है? भगवान को पसंद करने के लिए स्वभाव है वो। क्या हुआ? बोले कि उसने कहा कि जो पारिजात का वृक्ष है वो स्वर्ग के महान वासियों के लिए है, जो पृथ्वी के लोग के तुच्छ वासी उनके लिए नहीं है। सत्यभामा बोल दिया, हे प्रभु, आपको इसने स्वर्ग, आपको इंद्र ने तुच्छ पृथ्वीवासी कहा है, आप तो तीनों लोगों के स्वामी हो। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, हमें अभी इंद्र को एक सदा एक पाठ पढ़ाना पड़ेगा। तो सत्यभामा को साथ में लेके जाते हैं, सत्यभामा और इंद्र, सत्यभामा और कृष्ण, उधर शची और इंद्र। सत्यभामा वहां पर शची को देखे बोलती है कि तुमने मेरे पति का अपमान किया था, अभी देखो मेरे स्वामी तुम्हारे पति का कैसे सारा अहंकार नष्ट कर देते। तो वो बोलते हैं, तो शची भी क्रोध को बोलते हैं कि मेरे पति के पास वज्र है, वज्र से बड़े बड़े असुरों का विनाश कर देते हैं, तो ये बहुत बहुत ये पृथ्वी का कृष्ण क्या करेगा। तो फिर उनमें से वाद चल रहा होता है, फिर इंद्र और कृष्ण अपने दोनों धनुष बांध लेके युद्ध करने लगते हैं, और युद्ध चल रहा होता है तो फिर क्या होता है, इंद्र का सारा धनुष टूट जाता है। फिर इंद्र अपना वज्र उठाता है, वज्र फेंकता है। जब वज्र फेंकता है तो भगवान कृष्ण अपने तीर से वज्र को तोड़ देते हैं पूरा, और इंद्र का सबसे बड़ा जो शस्त्र है वज्र है, वो टूट गया तो अभी करेगा क्या बेचारा। तो फिर भगवान अपना शक्तिशाली शस्त्र है सुदर्शन चक्र उठा लेते, और जैसे सुदर्शन चक्र उठा लेते हैं तो इंद्र डर जाता है, और डर के अपने ऐराव से नीचे कूद के भागने लगता है। और जब भागने लगता है तो सारे द्वारका के श्रोताए हंसने लगते हैं, इंद्र कहाँ भाग रहे हो? तो इंद्र कुछ सुनता ही नहीं, भागते रहता है। और फिर भगवान चक्र छोड़ते हैं तो अब इंद्र समझता है कहीं बच नहीं सकता मैं, तो दौड़ते चक्र से बचते हुए वो आके भगवान के चरणों में गिर जाता है। और भगवान के चरणों में गिर के बोलता है, भगवान मैं आपके जो सर्वोच्च स्तर है उसको भूल गया था, कृपया मुझे माफ कर दो। क्योंकि इंद्र भक्त ही है तो भगवान उसको माफ कर देते हैं। तो उसके बाद में बोलते ये एक पारिजात का वृक्ष क्या है, सारा बगीचा नंदन का बगीचा है स्वामी, आपका ही, आपको जो चाहिए ले लीजिए, पर सुदर्शन चक्र को छोड़ दिए मुझसे। तो फिर वो छोड़ देते हैं। फिर भगवान सुंदर पारिजात का वृक्ष लेके आते हैं, और फिर सत्यभामा का जो महल होता है उसके अंदर नीचे लगा दे। सत्यभामा बोलती है कि जो उसका मेन गेट है उसके बाजू में लगाओ। उनका क्या सोचना था कि सारी रानियां को देखना चाहिए कि मेरे लिए एक पारिजात का वृक्ष आ गया है। तो रुक्मिणी तभी होती है स्वागत करने के लिए भगवान का, कि आप जो विजय योद्धा के रूप में वापस आ गए, तो उनकी आरती उतारती है। तो सत्यभामा बोलती है, देखो तुम्हारे लिए तो एक वृक्ष ही लाया, एक फूल लाया था, पर मेरे लिए कृष्ण ने एक पूरा वृक्ष लाया है। तो रुक्मिणी बड़ी मधुरता से प्रसन्नता से बोलती है कि जिसके पास कृष्ण के रूप में संपत्ति है तो एक वृक्ष हो या एक फूल हो दोनों नगण्य है। अगर कृष्ण है, कृष्ण की भक्ति है, कृष्ण से स्वामी है, तो और किसी भी चीज की कमी नहीं है। तो ये सब जो लीला है ये वास्तव में योग माया में होती है, कि मतलब दोनों एक तरह से योग माया है, रुक्मिणी और सत्यभामा दोनों योग माया में है, राधा रानी चंद्रावली दोनों योग माया में है। पर वास्तव में योग माया में जितना ज्यादा व्यक्ति आवृत होता है, कि भगवान के महिमा को जितना भूल जाता है, भगवान के माधुर्य को जितना याद करता है, उतना वो भगवान के और करीब जाता है, और उतना वो घनिष्ठ संबंध होता है। तो प्रभुपाद जी बोला करते थे कि वास्तव में हम जो भगवान के माधुर्य को तभी समझ सकते हैं जब हम पहले भगवान की महिमा को समझेंगे। फिलोसॉफी फर्स्ट पास्ट टाइम्स लेटर, पहले हम तत्व ज्ञान समझना चाहिए। लीलाएं बहुत मधुर है, पर लीलाओं की मधुरता केवल एक मनोरंजन के स्तर पर नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ये जो हमने चर्चा कहानी सुनी ये अगर हमको तत्व ज्ञान पता नहीं है तो साधारण पति पत्नी में जो झगड़े होते रहते हैं वैसे ही लगे समय लगेगा हमको। तो उस तरह से अगर नहीं गलतफहमी होनी है तो हमें समझना चाहिए कि ये वास्तव में भगवान है और ये उनके शुद्ध भक्त है, तो अभी न तो सत्यभामा को कोई एक फूल के प्रति आ सकती है, किसी भी चीज के प्रति उनको भगवान से ज्यादा आसक्ति नहीं है, पर इस तरह से बर्ताव करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, इसीलिए वो इस तरह से बर्ताव करती हैं। और ये जो सब लीलाएं हैं ये सब योग माया में चलती हैं। और तो अभी हमें भगवान से प्रार्थना करके, हम जब हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं तो उससे दो चीजें होती है। कुलशेखर महाराज कहते हैं कि व्यामोह प्रशम औषधम मुनि मनोवृत्ति प्रवृत्ति औषधम, व्यामोह प्रशम, जो महामाया का प्रभाव है वो कम होते जाता है, कम होते जाता है, कम होते जाता है, मुनि मनोवृत्ति प्रवृत्ति औषधम, कि जो मुनि है नारद मुनि से महान मुनि है वो भगवान का स्मरण करते हैं, तो हम सबके मन की वृत्ति है कि भगवान का स्मरण करें, प्रवृत्ति को और प्रवृत्त करता है हरिनाम। तो हरिनाम के द्वारा महामाया का प्रभाव कम करके, योग माया का प्रभाव बढ़ा के हम भगवान की भक्ति में अग्रसर हो सकते हैं। तो आखिरी श्लोक है, ज्यादा संबंध नहीं इसका, 18.61 जो है, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेषु अधिष्ठितं ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढानि माया, वो श्लोक इतना ही बता रहा है कि माया मेरे अधीन है और मेरे अधीन जो माया है उसके उसके शरीर उसके प्राप्त किया हुआ शरीर जो है उसमें जीवात्मा भ्रमण कर रहे हैं। पर भगवद्गीता बड़ी स्पष्ट है कि वास्तव में भगवान माया के परे है, भगवान के शरण लेके हम माया के परे जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो यशोदा माई है वह योग माया का इतना प्रभाव है, जो कृष्ण धर्म ने ऐसे बताया कि भगवान हमारे पिता है, कि भगवान हमारे पिता है, ओ फादर दा वाट इन हेवन, इस्लामिक धर्म में वो भगवान को पिता नहीं मानते हैं, और वो क्रिश्चियन इस मुस्लिम लोग जो है क्रिश्चियन लोगों का बहुत निंदा करते हैं, बोलते हैं कि आप भगवान को अपने पिता नहीं कह सकते, खुद को भगवान के पुत्र अपने पुत्र नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि हम भगवान के पुत्र है तो आप भगवान पर पुत्र उत्पत्ति जैसे प्राणी जैसे कार्य का आरोप लगा रहे हो, यू आर इम्पोजिंग ऑन गॉड द बेस्टियल एक्टिविटी ऑफ प्रोक्रिएशन, दैट्स वाई यू कैनॉट से दैट यू आर द सन ऑफ गॉड। पर वास्तव में भगवान को पुत्रोत्पत्ति करने के लिए शारीरिक संघ की कोई जरूरत नहीं है, वो सिर्फ अपने मन की इच्छा से पुत्र उत्पन्न कर सकते हैं। पर तो मतलब एक धर्म देखिए, क्रिश्चियनिटी में सिर्फ भगवान को पिता मानते हैं, इस्लाम में भगवान को पिता भी नहीं मानते, भगवान को निरूप मान लेते हैं। पर यहाँ पे हम देखते हैं भागवत में कि भगवान को पिता मानना छोड़ दो, भगवान को पुत्र मानते हैं, ये योग माया का प्रभाव है। और इससे बड़े मधुरता से दिव्य प्रेम का आदान प्रदान होता है। तो ये जो सर्वोच्च गोलोक वृंदावन की जो रेवलेशन है, जो ज्ञान है, वो चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, श्रील प्रभुपाद जी ने हम सब पे लाया है, और हम सब हरे कृष्ण महामंत्र के जप के द्वारा इसी दिव्य योग माया में प्रवेश करके सदैव आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। तो सारांश में चर्चा की, सबसे पहले हमने देखा कि योग जो माया की संकल्पना अद्वैत वेदांत में या मायावाद में है और वैष्णव में है वो बहुत अलग है। फिर हमने देखा कि कैसे शास्त्रों के आधार पर, भगवद्गीता के आधार पर जो माया की संकल्पना है मायावादियों की वो गलत है, वैष्णव की सत्य है। और फिर हमने देखा कि कैसे महामाया से निकल के महामाया में जितना व्यक्ति ज्यादा जाता है उतना वो भगवान से दूर जाता है, पर योग माया में जितना जाता है ज्यादा जाता है उतना वो भगवान के करीब जाता है। और उसमें हमने रुक्मिणी और सत्यभामा या राधावली चंद्रावली इनका जो भगवान से संबंध है उसके बारे में पारिजाथरण की लीला का चर्चा किया। और अंत में हमने देखा कैसे हम भगवान के ऐश्वर्य महिमा को समझकर, फिर उनके माधुर्य को समझकर भगवत भक्ति में अग्रसर होकर भगवत धाम लौट सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, ताई गौर प्रेमानंद। थैंक यू वेरी मच।